ये आकाशवाणी है। अब आप नईम अख्तर से समाचार सुनिए। वित्त वर्ष 2025 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 6.4% की वृद्धि और वित्त वर्ष 2026 में ये वृद्धि 6.3 से 6.8% के बीच रहने की संभावना है। कल संसद के दोनों सदनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण में ये अनुमान लगाया गया। आर्थिक सर्वेक्षण में इस बात पर बल दिया गया है कि घरेलू अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत बनी हुई है, जिसमें संतुलित राजकोषीय समेकन और स्थिर निजी खपत है। इसमें उल्लेख किया गया है कि देश ने कृषि और सेवा क्षेत्र द्वारा समर्थित स्थिर आर्थिक विकास प्रदर्शित किया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में 5.4% से घटकर अप्रैल से दिसंबर 2024 में 4.9% हो गई है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वर ने कहा है कि भविष्य का क्षेत्र कृषि है और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में कृषि क्षेत्र के योगदान को 0.75% से बढ़ाकर 1% करने की पर्याप्त संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज आम बजट पेश करेंगी। वित्त मंत्री ने कल नई दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में बजट बनाने की प्रक्रिया में शामिल सचिवों और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व भर में अस्थिरता के बीच भारत आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता के एक स्तंभ के रूप में दुनिया के सामने उदाहरण पेश कर रहा है। राष्ट्रपति ने ये बात कल संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए कही। केंद्र ने 4 नए रामसर स्थलों को जोड़ने की घोषणा की है। इससे कुल मिलाकर रामसर स्थलों की संख्या 89 हो गई है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस से पहले सरकार ने तमिलनाडु में सक्करकोट्टई पक्षी अभयारण्य और थेरथंगल पक्षी अभयारण्य, सिक्किम में खेचोपलरी आर्द्रभूमि और झारखंड में उधवा झील को देश के रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि भारत अब भी एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला देश है और दुनिया में तीसरे स्थान पर है। उन्होंने तमिलनाडु को 20 रामसर स्थलों के साथ सबसे अधिक संख्या वाला राज्य बनने के लिए बधाई दी। केंद्र ने सुशासन, सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान संशोधन नियम 2025 के लिए आधार प्रमाणीकरण को अधिसूचित कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने कहा कि जनहित में विभिन्न सेवाएं प्रदान करने के लिए आधार प्रमाणीकरण को सरकारी और निजी संस्थाओं तक विस्तारित किया गया है। संशोधित नियमों से लोग ई कॉमर्स, यात्रा, पर्यटन, आतिथ्य और स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में कई नई सेवाओं का निर्बाध रूप से लाभ उठा सकेंगे। इससे आजीविका में सुगमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राजधानी दिल्ली के तेजी से विकास के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली के द्वारका में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली के लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जो गरीबों के लिए घर बनाने, दिल्ली को आधुनिक बनाने और हर घर नल से जल पहुंचाने जैसी आकांक्षाओं को पूरा कर सके। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा शुरू की गई सभी कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कल यमुना मुद्दे पर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और भाजपा पर लोगों के बीच नफरत फैलाने का आरोप लगाया। विश्व पुस्तक मेला 2025 आज से दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। इस वर्ष मेले की थीम है हम भारत के लोग। 9 दिवसीय इस मेले का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। मेले में भारत के अलावा फ्रांस, कतर, यूएई, सऊदी अरब, कोलंबिया और रूस समेत 50 देशों के लेखक और वक्ता शामिल होंगे। हॉकी इंडिया लीग में आज हैदराबाद तूफान लीग खिताब के लिए शराची राण बंगाल टाइगर से भिड़ेगा। हैदराबाद तूफान ने कल राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में जेएसडब्ल्यू सूरमा हॉकी क्लब को 3-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।